आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। रेलवे का महकमा दिवाली और छठ पूजा के दौरान बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाएगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान भारत रूस तिजारत में अशिया और सामान के एतबार से 5 गुना इजाफा हुआ है। इसराइल ने कहा है कि उसने गजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए फौजी कार्रवाई के इब्तदाई इकदाम किए हैं। बुल्गारिया में 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की तपस्या ने सोने का तमगा जीता है। और अव्वलीन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की डल झील में शुरू हो रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल बिहार और मगरबी बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अपने इस दौरे में वज़ीर-ए-आज़म बिहार में गया में तकरीबन 13,000 करोड़ रुपये लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
गया जी से वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो गया और दिल्ली के दरमियान अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली और कोडरमा के दरमियान बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म 6,880 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए 660 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वो मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत मुंगेर में 520 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवरेज नेटवर्क का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 1260 करोड़ रुपए मालियत के शहरी बुनियादी ढांचे से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
जनाब मोदी मगरबी बंगाल के अपने दौरे में 5,200 करोड़ रुपये लागत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो कोलकाता में नए तामीर किए गए सेक्शन पर मेट्रो ट्रेन खिदमात को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी 7.2 किलोमीटर तवील 6 लेन वाली कोना एक्सप्रेस वे का संग बुनियाद भी रखेंगे, जिस पर 1,200 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आएगी। इससे हावड़ा आसपास के दही इलाकों और कोलकाता के दरमियान कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया है कि दिवाली और छठ पूजा के मौके पर बिहार के लिए 12,000 खसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। जनाब वैष्णव और बिहार एनडीए रहनुमाओं के दरमियान हुई मुलाकात के बाद ये ऐलान किया गया। जनाब वैष्णव ने कहा कि रियासत के रहनुमाओं के साथ आवाम की सफरी जरूरियात पर हुए तबादला ख्याल के बाद रेलवे की वजारत ने न सिर्फ नई ट्रेनों बल्कि दीगर कई स्कीमों और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर काम किया है।
जो दीपावली और छठ के आगामी 2 बड़े त्योहार हैं, इसके लिए विशेष व्यवस्था की जाए ऐसी डिस्कशन में आया। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाए कि किस तरह से हमारे यात्रियों को रिटर्न जर्नी में सुविधा हो। तो इस चर्चा के बाद में ये तय हुआ 12,000 स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, जिससे कि यात्रियों को इन 2 बड़े पर्वों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि आम जुमरे के मुसाफिरों की सहूलत के लिए 4 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी, जो दिल्ली और गया, सहरसा और अमृतसर, छपरा और दिल्ली और मुजफ्फरपुर और हैदराबाद को जोड़ेगी। रेलवे के वजीर ने मजीद बताया कि नई तजुर्बाती स्कीम के तहत 13 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के दरमियान सफर करने वाले और 17 नवम्बर और 1 दिसंबर के दरमियान वापसी का सफर करने वाले मुसाफिरों को कन्फर्म टिकट मिलेगा। इसके अलावा इन मुसाफिरों को वापसी के सफर के किराए में 20% की रियायत भी दी जाएगी। ईपीएफओ में इस साल जून के महीने में अब तक का सबसे बड़ा 21,89,000 अराकीन का मजमूई इजाफा दर्ज किया गया है। यह आदादोशुमार 9.14% का इजाफा जाहिर करते हैं, जो कि अप्रैल 2018 में शुरू की गई पेरोल डेटा ट्रैकिंग के बाद से इंदिराज की सबसे ऊंची सतह है। मेहनत और रोजगार की वजारत ने बयान में इत्तला दी है कि इस महीने करीब 10,62,000 नए सारिफिन ने इंदराज किया है, जो कि मई 2025 के मुकाबले 12.68% की बढ़ोतरी है और पिछले साल जून के मुकाबले 3.61% का इजाफा है। वजारत ने बताया कि 18 साल से 25 साल उम्र के ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 6,39,000 नए सारिफिन का इजाफा हुआ है। भारत की मुनफरिद शनाख्त से मुतालिक अथॉरिटी ने आधार पर मबनी सारिफिन की बिला रुकावट तस्दीक के अमल के लिए प्राइवेट सैटेलाइट पर मबनी इंटरनेट खिदमात फराहम करने वाली कंपनी स्टारलिंक के साथ इश्तराक किया है। एक बयान में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे की वजारत ने एक बयान में कहा है कि इससे भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के भरोसेमंद होने और इसकी उम्दा कारकर्दगी की अक्कासी होती है। बयान में यह भी कहा गया है कि मजकूरा तआवुन से ये बात उजागर होती है कि किस तरह आधार शफाफियत और जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए खिदमात पहुंचाने में इख्तराई तरीक़ेकार इख्तियार कर सकता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान भारत रूस दोतरफा तिजारत में अशिया और सामान के एतबार से 5 गुना से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साल 2021 में ये 13 अरब डॉलर थी, जो कि साल 2024-25 में बढ़कर 68 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि इस इजाफे के साथ साथ बड़ा तिजारती अदम तवाजुन भी पैदा हुआ है और ये 6.60 अरब डॉलर से बढ़कर 58.90 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि तकरीबन 9 गुना है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात पर फौरी तौर से तवज्जो दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वो मॉस्को में रूस के अव्वल नायब वजीर आजम डेनिस मंतूरोव के साथ भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन के 26वें इजलास की मुश्तरक तौर पर सदारत कर रहे थे, जो तिजारती, इकतसादी, साइंसी, तकनीकी और सकाफती इश्तराक से मुतालिक है।
Over the last 4 years, bilateral trade in goods has increased from more fivefold, from $13 billion in 2021 to $68 billion in 2024-25, and it continues to grow. However, a major trade balance has accompanied the growth. It has increased from $6.6 billion to $58.9 billion, which is about 9 times. So we need to address that urgently.
एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। इसमें तिजारत और इक्तसादी शोबा, ज़िरात, तवानाई, सनतें, हुनरमंदी, मोबिलिटी, तालीम और सकाफत शामिल हैं। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने गजा शहर पर कब्जा करने और इसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए जमीनी कार्रवाई के सिलसिले में इब्तदाई इकदाम शुरू कर दिए हैं। एक बड़े हमले की तैयारी के लिए फौजी एहलकार जैतून और जबालिया समेत मुजाफाती इलाकों में पहले ही सरगर्म अमल हैं। इसराइल के वजीर दिफा ने कल मुतालिका मंसूबे को मंजूरी दी। अब इसराइल की सिक्योरिटी से मुतालिक काबीना इसका जायजा लेगी। इसराइल की दिफाई फोर्सेज ने कहा है कि इस कार्रवाई में मावनत के लिए इसराइल 60,000 रिजर्व एहलकारों को तलब कर रहा है, ताकि वो भी इस मिशन में शामिल हो सकें। इम्कान है कि इस कार्रवाई के नतीजे में शुमाली गजा से हजारों फलस्तीनियों को जुनूब का रुख करना पड़ेगा, जहां इमदाद की किल्लत की वजह से पहले ही बहरान बढ़ता जा रहा है। उधर हमास ने इस ऐलान की मजम्मत की है और इसराइल पर बकौल उसके आम शहरियों के खिलाफ वहशियाना जंग को तूल देने का इल्जाम लगाया है। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा है कि कल इसराइल के हमलों में 3 बच्चों और उनके वालदेन समेत 25 अफराद मारे गए। एजेंसी के तर्जुमान ने गजा शहर के जैतून और सबरा इलाकों की सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक करार दिया है। उधर कतर और मिस्र ने एक नए जंग बंदी समझौते की तजवीज़ पेश की है, जिसमें 60 दिन की आर्जी जंग बंदी और तकरीबन आधे यरगमाल अफराद की रिहाई शामिल है। हमास का कहना है कि उसने मजकूरा मंसूबे को कबूल कर लिया है, लेकिन इसराइल ने अभी तक बाजाब्ता तौर पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। इसराइली हुकाम ने कहा है कि वो मुकम्मल समझौता चाहते हैं, जिसमें यरगमाल बनाए गए सभी अफराद की रिहाई शामिल हो। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात खित्ते में शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि सौराष्ट्र और कच्छ में आज इंतहाई शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा महकमे मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान महाराष्ट्र और मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, कोंकण और गोवा में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने यह भी कहा है कि अगले 3 दिन के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और सिक्किम के मुख्तलिफ मकामात पर बिजली की गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इधर गुजरात में सौराष्ट्र और जुनूबी गुजरात के साहिली जिलों में दूर दूर तक तेज बारिश होने की इत्तला मिली है। मुकामी बांधों और दरियाओं का पानी किनारे से बाहर बह रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है اور خطے میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہوئی ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ جوناگڑھ، دیو بھومی دوارکا، پوربندر اور گیر سومناتھ سمیت بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائی انجام دی گئی ہے.
جوناگڑھ ضلع اور پوربندر کے بعض حصوں میں کل بہت تیز بارش ہوئی. جوناگڑھ ضلع کے مندردا میں 13 انچ بارش ریکارڈ کی گئی. بارش سے متاثرہ ضلعوں کے 200 سے زیادہ گاؤں میں بجلی کی سپلائی پر اثر پڑا ہے. پانی بھر جانے کی وجہ سے تقریباً 240 سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہیں. ان میں ریاستی شاہراہیں بھی شامل ہیں. کل پوربندر میں بجلی گرنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی. سوراشٹر کے سب سے بڑے شترنجے ڈیم کے تقریباً 56 پھاٹک کھول دیے گئے ہیں اور آس پاس کے گاؤں میں چوکسی کا اعلان کر دیا گیا ہے. جنوبی گجرات کے ضلعوں میں بھی کہیں اوسط اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے. موسمیات محکمے نے دیو بھومی دوارکا کے لیے ریڈ الرٹ اور سوراشٹر اور جنوبی گجرات کے 10 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنٹ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان.
بھارتی محکمہ موسمیات نے مہاراشٹر میں ایک ہفتے سے جاری شدید بارش کے بعد اب موسم بہتر ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ممبئی اور اس کے مضافاتی علاقوں تھانے، پالگھر، رائے گڑھ اور رتنا گیری کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. پونے کے گھاٹوں کے لیے اورنج الرٹ، جبکہ ناسک اور ستارہ کے گھاٹوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے 800,000 ہیکٹیئر سے زیادہ زرعی اراضی پر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. بادل پھٹنے کے بعد آئے اچانک سیلاب سے متاثرہ جموں کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے چسوتی گاؤں میں تلاش اور بچاؤ کارروائیاں آج لگاتار 8ویں دن بھی جاری ہے. اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 65 ہو گئی ہے، جس میں سی آئی ایس ایف کے 3 اہلکار اور جموں کشمیر پولیس کے 1 ایس پی او شامل ہیں. بلغاریہ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں تپسیا نے بھارت کے لیے سونے کا پہلا تمغہ جیتا ہے. انہوں نے خواتین کے 57 کلو گرام کے زمرے کے فائنل میں ناروے کی پہلوان کو 5-2 سے ہرا دیا. پہلا کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول آج سے جموں کشمیر میں سری نگر کی خوبصورت ڈل جھیل میں شروع ہوگا. اس 3 روزہ قومی ٹورنامنٹ میں 36 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے 400 سے زیادہ چوٹی کے کھلاڑی روونگ، کیاکنگ اور کینوئنگ جیسے کھیلوں میں سونے کے 24 تمغوں کے لیے مقابلہ آرائی کریں گے. یہ عمر کی حد سے آزاد پہلی قومی چیمپئن شپ ہے، جس کے سبھی 24 کھیل اولمپک کے کھیلوں کے پروگرام کا حصہ ہیں. اس فیسٹیول میں 3 مقابلوں، واٹر اسکیئنگ، شکارا بوٹ دوڑ اور ڈریگن بوٹ دوڑ کا بھی مظاہرہ کیا جائے گا، جس کا مقصد سیاحت کو فروغ دینا ہے. یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر.
شکریہ ضمیر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے متعلق خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے 130واں آئینی ترمیمی بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے سپرد. نائب صدر کے انتخاب کے لیے این ڈی اے کی طرف سے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کے کاغذات نامزدگی داخل کیے جانے سے متعلق خبر کو اردو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا پر عوامی سماعت کے دوران ہوئے حملے سے متعلق خبر کو بھی تقریباً سبھی اردو اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. بھارت اور چین نے راست پروازیں بحال کرنے کا اعلان کیا ہے. اس خبر کو روزنامہ راشٹریہ سہارا اور کئی دیگر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر پیش کیا ہے. روزنامہ راشٹریہ سہارا نے افغانستان میں سڑک حادثے میں 17 بچوں سمیت 79 افراد کی موت ہونے سے متعلق خبر کو اپنے صفحے اول پر نمایاں کیا ہے.
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی کل بہار اور مغربی بنگال کے دورے پر جائیں گے، جہاں وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. ریلوے کا محکمہ دیوالی اور چھٹ پوجا کے دوران بہار کے لیے 12,000 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ گزشتہ 4 سال کے دوران بھارت روس تجارت میں اشیاء اور سامان کے اعتبار سے 5 گنا اضافہ ہوا ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے اور اسے اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے فوجی کارروائی کے ابتدائی اقدامات شروع کر دیے ہیں. بلغاریہ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارت کی تپسیا نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. اور اولین کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول آج جموں کشمیر میں سری نگر کی ڈل جھیل میں شروع ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا.